ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नागरिकता विधेयक के ऊपर राष्ट्रीय सभा में विचार विमर्श, अगली बैठक में भी रहेगा जारी। महाभियोग सिफारिश समिति में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा से आज भी लिया गया बयान, भाद्र 19 गते को भी लिया जाएगा बयान। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रदीप गिरी की 13वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने किया देशभर शोक सभा का आयोजन और इसराइल ने सीरिया पर की एयर स्ट्राइक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजे जाने के बाद प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त नेपाल नागरिकता प्रथम संशोधन विधेयक 2079 पर बहस राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक में भी जारी रहेगी। आज की बैठक में सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा ने कहा कि बहस में हिस्सा लेने वाले सांसदों के बोलने का क्रम अभी भी पूरा न होने पाने के कारण राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक में भी बहस जारी रहेगी। इससे पूर्व राष्ट्रीय सभा की आज की पहली बैठक ने योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2079 को पारित किया। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौड़ेल द्वारा प्रस्तुत विधेयक में प्रतिनिधि सभा द्वारा किए गए संशोधन स्वीकार सहित बैठक ने पुनः पारित किया। इसी तरह भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राइन द्वारा प्रस्तुत शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 पर विचार विमर्श करने के प्रस्ताव को बैठक ने स्वीकृत किया। राष्ट्रीय सभा की बैठक में विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन भी पेश हुए। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक भाद्र 17 गते शुक्रवार दोपहर 2:59 पर बुलाई गई है। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा से आज दूसरे दिन भी बयान लिया गया। आज सिंह दरबार में हुई महाअभियोग सिफारिश समिति की आज की बैठक ने निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा से बयान लिया। उन पर लगे आरोपों के संबंध में कुल 43 सवालों के जवाब जबरा को देने हैं। उनमें से कल चार और आज दो सहित उनसे अब तक 6 सवाल पूछे गए हैं। पांचवा और छठवा सवाल कुछ लंबे और व्याख्यानात्मक होने के कारण आज समय अधिक लग गया, ये बात समिति के सदस्य मीन विश्वकर्मा ने बताई। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्गीय प्रदीप गिरी के 13वें दिन की पुण्यतिथि पर नेपाली कांग्रेस ने आज केन्द्र सहित सभी जिलों में लोकसभा का आयोजन किया। नेपाली राजनीति के समाजवादी चिंतक, लेखक, कांग्रेस के निष्ठावान त्यागी नेता, पूर्व केंद्रीय सदस्य गिरी का इलाज के दौरान ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पताल में 75 वर्ष के उम्र में इसी भाद्र 4 गते को निधन हुआ था। स्वर्गीय गिरी की 13वीं पर आज कांग्रेस केंद्रीय समिति द्वारा आयोजित लोकसभा में प्रधानमंत्री एवं पार्टी सभापति शेर बहादुर देवा ने नेपाली कांग्रेस के नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरी को समाजवादी और दार्शनिक व्यक्तित्व के रूप में स्मरण किया। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाल के चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान पहुंचाने वाली महिला चिकित्सकों को सम्मान पत्र सहित सम्मानित किया है। आज नेपाल चिकित्सक संघ द्वारा राष्ट्रपति के कार्यालय शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति भंडारी ने वुमेन इन मेडिसिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 5 महिला चिकित्सकों और वुमेन इन मेडिसिन अवार्ड से 10 महिला चिकित्सकों को सहित कुल 15 महिलाओं को सम्मान पत्र सहित सम्मानित किया गया है। प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन में सीट बंटवारे के विषय में सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबंधन की बैठक प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में जारी है। सीट बंटवारे के विषय में संभवतः आज ही अंतिम रूप देने के हिसाब से बैठक अब तक जारी है। इस बात की जानकारी सचिवालय के सदस्य केशवराज जोशी ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजी।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन यानी कि आज ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया गया। आज महिलाएं अरुंधति सहित सप्तऋषि की विधिपूर्वक पूजा आराधना कर ऋषि पंचमी का त्योहार मना रही हैं। आज सुबह उठकर नजदीक के नदी तालाब ताल तलैया पहुंचकर 365 दतिवन से दांत मांजकर गाय के गोबर मिट्टी और राख लगाकर स्नान कर नए वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्तऋषि की पूजा आराधना कर आज ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया गया। आज 269 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से मुक्त होने वाले की संख्या 98.5 पहुंची है। वहीं आज एक संक्रमित की मौत हो गई। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने उच्च अदालत दीपायल के तत्कालीन रजिस्ट्रार रण बहादुर कटवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। तत्कालीन रजिस्ट्रार कटवाल के ऊपर आर्थिक वर्ष 2078-79 में विनियोजित बजट में अनियमितता कर खर्च करने, स्थायी शिक्षिका के रूप में अन्यत्र कार्यरत अपनी पत्नी को उच्च अदालत दीपायल के कम्प्यूटर ऑपरेटर पद पर नियुक्ति कर पारिश्रमिक देने और विभिन्न शीर्षकों के बजट पर फर्जी बिल भरपाई कर 4,98,000 से अधिक अनियमितता करने का आरोप सिद्ध करते हुए आयोग ने आज विशेष अदालत काठमांडू में मुकदमा दर्ज किया है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता श्याम प्रसाद भंडारी द्वारा जारी बयान में उल्लेखित है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल ने बुधवार देर रात को सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की। पहला हमला अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ, जहां हथियार लेकर पहुंचे ईरान के विमान को निशाना बनाया गया। दूसरा हमला दस्मिक एयरपोर्ट के पास हुआ। दोनों ही जगहों पर इजराइल की तरफ से मिसाइल दागी गई। सीरिया की न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक इजराइल ने 4 मिसाइलें दागी। हमले के बाद एयरपोर्ट पर भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने इस पर बयान देने से इनकार कर दिया। इससे पहले 14 अगस्त को भी इजराइल ने राजधानी दस्मिक और टार्टर्स के पास हवाई हमला किया था। इस हमले में 3 सैनिकों की मौत हो गई थी, 3 अन्य सैनिक घायल हुए थे। द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इजरायली हमलों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायल ने पहले भी सीरिया में ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों के खिलाफ सैकड़ों बार कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी उसने हमले करने को स्वीकार नहीं किया है। दरअसल इजराइल को अपनी उत्तरी सीमा पर ईरानी घुसपैठ का डर बना रहा है। इसके चलते वो ईरानी बेस और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करता रहता है। जापान ने कहा है कि चीन और रूस के खतरे को देखते हुए वो क्रूज मिसाइल और हाई वेलोसिटी बैलिस्टिक मिसाइल बड़े स्तर पर बनाएगा। ये जापान के सैन्य विस्तार का हिस्सा होगा। इसकी जानकारी देश के रक्षा मंत्रालय के वार्षिक बजट में दी गई है। इसके तहत अन्य सैन्य हथियार भी विकसित किए जाएंगे। इनमें हाइपरसोनिक हथियारों का विकास भी शामिल है। ये फैसला जापान की अब तक की सैन्य निर्माण की नीति से बिल्कुल अलग है। जापान ने दशकों से अपनी सैन्य क्षमताओं और हथियारों के विकास को सीमित किया हुआ है। अपने बजट में रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर खास ध्यान दिलाया कि चीन एकतरफा ताकत के इस्तेमाल की धमकियां दे रहा है। इसमें उत्तर कोरिया को भी एक खतरा बताया गया है। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने ताइवान के नजदीक चीन के जारी सैन्य अभ्यास की निंदा की थी और इसे बड़ी समस्या बताया था। मैटरनिटी वार्ड में जगह न मिलने की वजह से एक गर्भवती भारतीय पर्यटक की मौत के बाद पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्री मार्टा टेमिडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि 34 वर्षीय महिला की एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाते समय कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे के पीछे अकेले यही एक मामला नहीं रहा। बीते कुछ महीनों से आलोचक पुर्तगाल में प्रसव कराने वाले अस्पतालों में काम करने वालों की भारी कमी का आरोप लगाते आ रहे हैं। डॉक्टर मार्टा टेमिडो वर्ष 2018 से स्वास्थ्य मंत्री की थी और पुर्तगाल को कोरोना महामारी से उबारने का श्रेय उन्हें भी दिया जाता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नागरिकता विधेयक के ऊपर राष्ट्रीय सभा में विचार विमर्श अगली बैठक में भी रहेगा जारी। महाभियोग सिफारिश समिति में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा से आज भी लिया गया बयान। भाद्र 19 को भी लिया जाएगा बयान। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रदीप गिरी की 13वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने किया देशभर शोक सभा का आयोजन और इजरायल ने सीरिया पर की एयर स्ट्राइक। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभ रात्रि।